नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। नमस्कार मलय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
और आज के स्पोर्ट्स के अंक में बहुत कुछ खास है, पर सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। भारत के जादूमणि सिंह मांडिंगबम ने विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 50 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे। आईपीएल टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस के साथ जारी। आईसीसी की ताजा टी20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में हार्दिक पांड्या पहले स्थान पर बरकरार। गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती तीसरे स्थान पर खिसके। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप कल से अर्जेंटीना में शुरू। मनु भाकर और सौरभ चौधरी सहित 43 भारतीय खिलाड़ी निशाना साधेंगे। तो शुरुआत मुक्केबाजी से करते हैं। भारत के जादूमणि सिंह मांडिंगबम विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 50 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। युवा मुक्केबाज जादूमणि ने क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में ब्रिटेन के एलिस ट्रॉबिस को 3-2 के विभाजित निर्णय से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में जादूमणि का मुकाबला उज्बेकिस्तान के असलबेक जलीलोव से होगा। उधर 75 किलो भार वर्ग में निखिल दुबे, 85 किलोग्राम भार वर्ग में जुगनू और 90 किलो से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र क्वार्टर फाइनल मुकाबले हार कर बाहर हो गए हैं। मलय जी, अगर बात करें जादूमणि की, बहुत ही कह सकते हैं कि युवा और राइजिंग बॉक्सर हैं भारत
बिल्कुल
के।
20 वर्ष ये जादूमणि जो हैं वो राष्ट्रीय चैंपियन हैं और पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप सिल्वर मेडलिस्ट एलिस ट्रॉब्रिज के साथ, पिछले साल के जो सिल्वर मेडलिस्ट थे रजत पदक विजेता, उनके साथ इनका मुकाबला हुआ था। 3-2 के 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से उन्होंने जीता। और ये 50 किलोग्राम वर्ग में जो उनकी ये जीत है, ये आने वाले समय में भारतीय मुक्केबाजों से ओलंपिक जैसे मंच पर स्वर्ण पदक की उम्मीदों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
क्योंकि देखा जाए तो ट्रोबिज ने आज शुरुआत बहुत ही आक्रामक स्टाइल जैसा उनका रहा है, तो उन्होंने उसी के साथ की, लेकिन जादूमणि ने सारे दबावों को झेला और उसके बाद अपने पंचेस से जवाब दिया।
बिल्कुल, देखिए उन्होंने शुरू में जो पहला राउंड हुआ तो ऐसा लगा कि इन पर काफी भारी पड़ रहे हैं ट्रोबिज, लेकिन उसके बाद जब मुकाबला हुआ, आगे बढ़ा और दूसरे तीसरे राउंड तक आते आते जादूमणि ने एक जो टेक्निक अपनाई, एक तकनीक अपनाई, उसमें ये थोड़ा प्रतिरक्षात्मक और जब मौका मिले तो पंचों से पाप प्रहार, और इसी तकनीक के कारण उनको जीत हासिल हुई। हालांकि स्प्लिट डिसीजन हुआ, जैसा कि आप जानती हैं, कोई एक सर्वसम्मति से ये फैसला नहीं हुआ, एक मत नहीं थे तीनों जजेस, लेकिन फिर भी जीत तो जीत है और अब सेमीफाइनल में वो पहुंचे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है।
और क्योंकि स्प्लिट डिसीजन जैसे इनका रहा तो ये फॉर्चुनेट रहे कि ये अगले दौर में पहुंच गए। ऐसे ही नरेंद्र थे, बहुत ही क्लोज फाइट थी उनकी और जीत के मुकाम पर ही थे, लेकिन ऐसी स्प्लिट डिसीजन से उन्हें मात तो झेलनी पड़ी।
बिल्कुल, फर्स्ट बोर्ड में उन्हें यूनानिमस मतलब सर्वसम्मति से, एक मत से उनको विजयी घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद वो 2-3 से हारे। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, बहुत ही कांटे की टक्कर जिसको कहते हैं वो थी, और दुर्भाग्यपूर्ण था। बाद में मैंने भी वो मुकाबला देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कि जैसे आज भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, वरना बस जरा सी कहीं कसर वो भी थी या नहीं थी, एक जज की नजर में जरा सी कसर रह गई।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हम इस टूर्नामेंट में जल्द ही एक मेडल जीतेंगे। अब खबर क्रिकेट के मैदान की। आईपीएल टी20 क्रिकेट में इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 7 और देवदत्त पड्डिकल 4 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात टाइटन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटन्स के कगिसो रबाडा निजी कारणों से मुकाबला नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह अरशद खान को मौका दिया गया है। तो अरशद खान ने भी देखा जाए तो
मौके का फायदा उठाया, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो जिसको कहते हैं जो तुरुप का इक्का, उनको विराट कोहली की विकेट मिली, और ये बहुत बड़ी बात है। और खासकर अगर आप देखें तो सिराज, जो कि स्वयं पहले आरसीबी के साथ खेल रहे थे, वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को छोड़कर अब उनके प्रतिद्वंदी के साथ खेल रहे हैं, और सिराज ने जो गेंदबाजी की है, क्या कमाल की गेंदबाजी थी। मुझे तो काफी हद तक जो जिस तरह से कल अर्शदीप ने जीत दिलाई थी पंजाब की टीम को, हालांकि वो ये कह रहे थे कि नहीं मैंने बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की, कॉमेंटेटर्स कह रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी की, उसी तरह से सिराज की गेंदबाजी अभी तक की जो रही है बहुत अच्छी रही है और बहुत बढ़िया खेले। लेकिन यहां मानना पड़ेगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जबरदस्त वापसी की है। पहले 7 ओवरों में ही 4 विकेट गिर गए थे और उसके बाद जो उस तरह से जिस तरह से उन्होंने वापसी की है काबिले तारीफ है।
तो देखते हैं आज कौन बाजी मारेगा, क्योंकि विराट कोहली जब तक लिविंगस्टोन है क्रीज पर तो उम्मीदें बरकरार है आरसीबी।
बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से अभी टिके हुए हैं दोनों खिलाड़ी, अभी चौथे विकेट के बाद जब हम हमारे पास जो ताजा खबर आई थी वो यही थी कि अभी 4 ही विकेट हैं, तो इन 4 विकेटों के बाद, और हालांकि जो चोटी के खिलाड़ी थे फिल सॉल्ट और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी वो तो पेविलियन वापस लौट चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है,
ये पिक्चर अभी बाकी है। और अब कल के मैच के बारे में बात करें तो कल रात लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट सुनते हैं, इस पर चर्चा करेंगे।
पंजाब किंग्स ने कल के मैच में शानदार जीत के साथ अपना विजय अभियान जारी रखा। अर्शदीप सिंह की उम्दा गेंदबाजी के बाद प्रभ सिमरन और श्रेयस की अर्धशतकीय पारियों से पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उसके घरेलू मैदान पर 22 गेंद शेष रहते 8 विकेट से शिकस्त दी। इकाना स्टेडियम में पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। लखनऊ ने 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। लगातार तीसरे मैच में कप्तान ऋषभ पंत का खराब फॉर्म जारी रहा और वो 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। निकोलस पूरन के 44 रन की बदौलत टीम 150 रन के पार पहुंच सकी। आयुष बदोनी ने 41 और अब्दुल समद ने 27 रन का योगदान दिया। पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने 3 विकेट लिए। जवाब में पंजाब की टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। प्रभ सिमरन सिंह ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंद में 69 रन की पारी खेली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 52 और नेहल वादेरा ने 43 रन की पारी खेली। प्रभ सिमरन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 2 मैच में लगातार दूसरी जीत से पंजाब की टीम तालिका में 2रे नंबर पर पहुंच गई है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
जैसे आप पहले ही बात कर रहे थे अर्शदीप की, तो वो खुद कह रहे थे मैंने अच्छा नहीं खेला, लेकिन अगर 3 विकेट्स लिए और उसमें से 2 विकेट्स उन्होंने डेथ ओवर में लिए।
बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और वो ये कह रहे थे कि जिस तरह की पिच थी उसमें मुझे और प्रभावशाली होना चाहिए था। तो ये तो कहिए कि उनकी जो है ये बहुत ही बड़ा दिल है उनका कि वो ये कह रहे हैं 3 विकेट लेने के बाद भी कि हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की। लेकिन जो मैच हुआ उसमें जो प्रभ सिमरन की बात किए बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया उन्होंने, और श्रेयस अय्यर तो है ही, उन्होंने 30 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। तो अब कहा यह जा रहा है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी, और श्रेयस अय्यर आपको पता है नए आए हैं इस टीम में, तो श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग जो इनके कोच हैं, कहा जा रहा है कि दोनों ने जो रणनीति बनाई है अपनी टीम के बारे में, ये बहुत ही खतरनाक टीम साबित होने वाली है। और जिस तरह से इन्होंने कल का मैच जीता है बिना ओवरसीज प्लेयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा एक उन्होंने एक जो जिस पूरे चक्रव्यूह की रचना की थी वो बहुत अच्छा सोच समझ कर वो बनाया था और उनकी रणनीति बड़ी कामयाब रही।
पर अगर ऋषभ पंत का दूसरे ओवर परफॉर्मेंस देखे, लगातार तीसरे मैच में 20 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके,
जरा दिक्कत वाली बात तो है। मगर देखिए ऋषभ पंत कब वापसी कर जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऋषभ पंत का जो अंदाज है वो टिपिकल 20-20 ओवर्स वाला अंदाज है, IPL वाला अंदाज है, और अगर वो रन नहीं भी बनाते हैं तो कीपिंग में अगर करते हैं तो उसमें भी वो रन रोक लेते हैं। तो इस तरह से अभी उनका प्रदर्शन तो बहुत अच्छा नहीं है, शायद दिल्ली की टीम को छोड़ना उनके लिए बहुत भाग्यशाली नहीं सिद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ऋषभ तो ऋषभ
ही। और फिलहाल ICC की नई T20 रैंकिंग भी जारी हुई है, तो T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में हार्दिक पांड्या पहले स्थान पर ही बरकरार हैं, वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को नुकसान उठाना पड़ा है। वरुण एक स्थान नुकसान के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं। भारत के बाएं हाथ के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की ट्रेविस हेड शीर्ष पर हैं और तिलक वर्मा चौथे तथा सूर्य कुमार यादव पांचवें स्थान पर हैं। अगर हम बात करें तो शीर्ष दस में शामिल अन्य दो भारतीय गेंदबाजों में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई सातवें और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दसवें स्थान पर हैं। अक्षर पटेल तेरहवें स्थान पर हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है गेंदबाजों में न्यूजीलैंड के जैकब डफी 30 साल के डफी ने अभी तक सिर्फ 23 टी20 मुकाबले खेले हैं और अब वो इस फॉर्मेट में नंबर वन गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती समेत चार गेंदबाजों को पछाड़ दिया।
देखिए जब आईसीसी की रैंकिंग निकलती है तो पिछले दो हफ्ते में जो मैच हुए हैं या ठीक उससे पहले जो मैच हुए हैं उनमें जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है उसके आधार पर रैंकिंग तय होती है। तो ये इसीलिए बदलती रहती है लगातार लगातार। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, साल भर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो पिछले मैचों के प्रदर्शन के आधार पर अगर आपकी रैंकिंग में वरीयता क्रम में आप ऊपर स्थान पर हैं, ऊपर के स्थान पर हैं, तो आप वहीं बने रहते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी है जो पिछले दिनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और कौन सा खिलाड़ी है जिसने पिछले कुछ मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया
जी।
तो वरुण चक्रवर्ती ने पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था, ऊपर उठे थे, अब जब इधर नहीं खेल रहे हैं अच्छा नहीं,
और एक अंक पीछे थे टॉप पर आने से पहले जब पिछली रैंकिंग अगर उनके देखें। और अगली खबर पर नजर डालें तो भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम का साथ छोड़ने का फैसला किया है। यशस्वी इस टीम की बदौलत राष्ट्रीय टीम में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए मुंबई टीम छोड़ने का फैसला किया है। यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट संघ को पत्र लिखा और मुंबई के बजाय गोवा के लिए खेलने की इच्छा जताई जिसकी मान लिया गया है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। मनु भाकर कल से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में शुरू होने वाले आईसीसी विश्व कप 2025 में 43 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी दल का नेतृत्व करेंगी।
साल के पहले ISSF विश्व कप आयोजन में 45 देशों के 400 से अधिक निशानेबाज हिस्सा लेंगे। 43 निशानेबाजों के साथ भारत टूर्नामेंट में सबसे बड़ा दल है, जिसके बाद चीन 39 निशानेबाज उतारेगा, जबकि मेजबान अर्जेंटीना 38 निशानेबाजों के साथ तीसरा सबसे बड़ा दल होगा। निशानेबाज राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक की डबल कांस्य पदक विजेता मनु भाकर पिस्टल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। पेरिस में मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर के साथ ही सरबजोत सिंह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले स्वप्निल कुसाले भी ब्यूनस आयर्स में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। एशियाई खेलों और विश्व कप के स्वर्ण पदक विजेता सौरभ चौधरी ने वापसी की है और वे पुरुष पिस्टल टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले चुके अनीश भानवाला, विजयवीर सिद्धू, ईशा सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सिफ्त कौर सामरा, अर्जुन बाबूता, पृथ्वीराज टोंडिमन, अनंतजीत सिंह नरुका और रायजा ढिल्लन भी निशाना साधेंगे। दूसरे ISSF विश्व कप का आयोजन 13 से 22 अप्रैल तक पेरू के लीमा में किया जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
मान लीजिए सबकी नजर तो मनु भाकर पर रहेगी, लेकिन सौरभ चौधरी का जो कमबैक हुआ, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में वो सातवें स्थान पर रहे थे 10 मीटर एयर पिस्टल में, उसके बाद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन अब नेशनल चैंपियनशिप में भी उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और
ये देखना होगा कि किस तरह से वो वापसी कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कठिन मुकाबले हैं। आपको पता है ओलंपिक के तीनों पदक विजेता भी उसमें शामिल हैं,
तो देखते हैं कि कैसा रहता है कल से शूटर्स का दिन, क्योंकि कल से 10 मीटर एयर पिस्टल और स्कीट की स्पर्धाएं शुरू हो रही हैं। और हॉकी इंडिया ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में पिछले दो सप्ताह के प्रदर्शन के आकलन के बाद कोर खिलाड़ियों का समूह 65 से 40 खिलाड़ियों का कर दिया है। इसमें 28 सीनियर खिलाड़ियों की जगह बरकरार है, जबकि 12 नए खिलाड़ियों को 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप और राष्ट्रीय शिविर के पहले चरण में उनके प्रभावी प्रदर्शन के आधार पर चुना गया। समय कह रहा है आपसे अनुमति दी जाए। मले जी, आप स्टूडियो में आए, चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं। प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।